તારીખ 24/12/1995 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ પાના નંબર 6 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 139
ઉપયોગમાં જ્ઞાનરૂપ વસ્તુને જાણે ઉપયોગ આત્માથી જ્ઞાન ગુણથી પર્યાય ઉસ ઉપયોગ મેં વસ્તુ કા જ્ઞાન કરના હૈ કિસી ભી પદાર્થ કા જ્ઞાન ઉસકી અવસ્થા સે હોતા હૈ પદાર્થ કા જ્ઞાન કરને કા દૂસરા કોઈ ઇલાજ કોઈ ઉપાય કોઈ રસ્તા નહીં ઉપયોગ મેં માત્ર ઉપયોગ કો નહીં જાનના હૈ ઉપયોગ મેં વસ્તુ કો જાનના હૈ જ્ઞાન સ્વરૂપે જ્ઞાન રૂપ વસ્તુ કો જાનના હૈ જૈસે ચમક સે હીરા કો જાના જાતા હૈ વૈસે જબ ઉપયોગ મેં જ્ઞાન રૂપ વસ્તુ અપના સ્વરૂપ જાનને મેં આતા હૈ તબ અનંત મહિમા કા ભંડાર કૈસા જાનને મેં આતા હૈ જિસકી મહત્તા કિતની હૈ જિસકી કોઈ હદ નહીં હૈ ઉતની હૈ એસા અનંત મહિમા કા ભંડાર સાર મેને સુખ રૂપ સુખ સુખમય અવિકાર વિકાર રહિત શુદ્ધ અપાર શક્તિ સે મંડિત કિતની શક્તિ હૈ કે ગિનના ગિનતી કરે તો કોઈ શક્તિ કહે કે ગિનતી કા પાર આતા નહીં આત્મા મેં સંખ્યા સે ઉતની શક્તિ હૈ 1 2 3 4 એસી સંખ્યા સે કે ઇસકી ગિનતી કરને જાવે તો લાખ કરોડ અરબ ફિર અસંખ્ય ફિર અનંત ફિર આખર મેં આખિર મેં શક્તિ હો એસા નહીં આતા ક્યા કે જિસકી ગિનતી કરે તો યે આખિર મેં વો બાત નહીં આતી હૈ ઇતની શક્તિયાં હૈ 1 2 4 સંખ્યા એસે નહીં હૈ સંખ્યા એસે નહીં અનંત હૈ એસે અપાર શક્તિ સે મંડિત મંડિત મેને ભરપૂર મેરા સ્વરૂપ હૈ એસા ભાવ પ્રતીતિ દ્વારા કરે એસા ભાવ વિશ્વાસપૂર્વક કરે હમલોગ સમજતે હૈ વિશ્વાસ કિતના કરતે હૈ પ્રતીતિ કરતે હૈ કે નહીં કરતે હૈ એક દૂસરા સવાલ હૈ યે ભગવાન કે વચન હૈ જ્ઞાની કે જો વચન હૈ વો ભગવાન કે વચન હૈ તો હમકો ઇસમે કિતના વિશ્વાસ હૈ અગર પૂર્ણ વિશ્વાસ હો તો હમ ઉસકા અનુસરણ કે બિના રહે નહીં ઉસકા અમલીકરણ કે બિના રહે નહીં સમજતે હૈ જાનતે હૈ ફિર ભી પરિણમન નહીં કરને કા ક્યા કારણ કે વિશ્વાસ નહીં હૈ એહી કારણ હૈ इसलिए दूसरा संकेत में कृपालु देव ने 751 में वो बात लिया परमार्थ की स्पष्ट अनुभवांश से प्रतीति शब्द लिया है ये तो पहचान है और पहचान तो ज्ञान की पर्याय में होती है ज्ञान पहचानता है फिर भी वहां शब्द लिया प्रतीति बहुत गहरी बात किया है ऐसा क्यों किया कि वैसे हम जान तो लेते हैं कि आत्मा अनंत शक्ति का पिंड है अनंत शक्ति का स्वरूप होने के बावजूद भी इसकी प्रतीति नहीं विश्वास नहीं तो तो वो जानना कोई काम में आता नहीं है। पहचानने के काल में प्रतीति आती है। जैसे विश्वास किस पर हम रखते हैं कि जिसकी पहचान होती है उसी पर विश्वास किया जाता है, अनजाने पे कोई विश्वास करेगा नहीं, पहचान वालों का विश्वास करेगा। ऐसे यहां भी पहचान होती है तो साथ साथ विश्वास पैदा हो जाना जरूरी है, तो उस ज्ञान को पहचान रूप ज्ञान कहें। अगर विश्वास नहीं आता है तो वो ज्ञान पहचान रूप नहीं है, इसलिए दूसरा संकेत में प्रतीति शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञान रूप वस्तु को जानने का है, ज्ञान में जो कोई भी परिणाम है ये ज्ञान गुण का परिणाम है, तो शक्ति का व्यक्त रूप पर्याय में आता है। शक्ति का व्यक्त रूप किस में आता है? पर्याय में आता है। तो शक्ति को जानने का उपाय इसकी व्यक्ति ही है, और कोई शक्ति को जानने का उपाय नहीं है। उपयोग में मात्र उपयोग को जाने इतना नहीं करके उपयोग में वस्तु को जाने, पूरी वस्तु को जाने, एक गुण को भी नहीं जाने, एक शक्ति को भी नहीं जाने, फिर भी एक गुण को अनंत गुण का रूप है। ये प्रकरण लिया है, चिद विलास में लिया है, इसी ग्रंथ का करता है दीपचंद जी का असली बात। मैंने ये बात लिया है, एक प्रकरण लिखा है, एक गुण को अनंत गुण का रूप होता है, तो ज्ञान को अनंत गुण का रूप है, इसलिए उपयोग से अनंत गुणात्मक रखी पूरी वस्तु को जान लेना है। जैसे चमक से पूरा हीरा को जान लिया जाता है, वैसे चमक से पूरा हीरा को जान लिया जाता है कि नहीं जान लिया जाता है, उस तरह से चमक तो एक इसकी एक गुण की कोई पर्याय है, फिर भी पूरा हीरा को पहचानने में आता है चमक से। कोई भी जोहरी होता है वो हीरा को उठा करके आई ग्लास लगाएगा, सबसे पहले उसका ध्यान चमक पर जाएगा और बहुत सी बातें उसमें देखने की होती है, फिर भी अगर वो हीरे में चमक नहीं है तो दूसरी बात देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात खत्म, उसको एक साइड में रख देगा, भाई ये हीरा ही नहीं है, ये हीरा के आकार में दूसरी कोई चीज है लेकिन हीरा नहीं है, पहले चमक को देखेगा क्योंकि ये इसका मुख्य गुण है। वैसे ज्ञान है ये मुख्य गुण है, तो मुख्य गुण से पूरा आत्मा की पहचान आ जाती है, और जब पहचान आती है तो विश्वास आता है। तो वहां प्रतीति में ज्ञान विश्वास करता है, ऐसे ज्ञान का एक पहलू लेना है, क्योंकि श्रद्धा का भी उसमें रूप है, विश्वास करना वो ज्ञान की पर्याय है, लेकिन श्रद्धा प्रधान बात है, वो तो श्रद्धा का रूप आया ज्ञान में। इसलिए 751 पत्र में कृपालु देव ने वो बात पहचान के विषय में प्रतीति का लिया, तो कितने गहराई है उसमें, तो परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, उसको हम दूसरा संकेत कहते हैं। आत्मसिद्धि का खुलासा दे रहे हैं सुभाग भाई को, तो वो बात प्रतीति शब्द लिया है, क्यों कि वहां तो पहचान है, फिर प्रतीति शब्द क्यों लिया, कि वहां पहचान ऐसी है कि विश्वास आ जाता है कि मैं अनंत गुणात्मक वस्तु हूं, जो परमार्थ, उसमें परमार्थ शब्द लिया है, आत्मस्वरूप नहीं लिया, द्रव्य नहीं लिया, तत्व नहीं लिया, जीव तत्व नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, परमार्थ शब्द क्यों लिया? परम अर्थ मैंने प्रयोजनभूत, अर्थ मैंने प्रयोजनभूत, परम प्रयोजनभूत उसके अनुभवांश से, वेदन अंश से विश्वास आया, प्रतीति आई, उसको हम दूसरा संकेत कहते हैं। अनुभव मैंने वेदन, ज्ञान का वेदन उसका अंश है, क्योंकि यहाँ निर्विकल स्वसंवेदन उत्पन्न नहीं हुआ पहचानने के काल में, तो यहाँ अंश लिया है, वेदन अंश से पहचान हुई ऐसा लिया। और परमार्थ में दो बात है, हाँ, निर्विकलता नहीं होने पर भी वेदन तो सभी को चालू है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता, तो यहाँ पहचानने के काल में मालूम पड़ा, भावभाषण के काल में मालूम पड़ा, वही सम्यक दर्शन का बीजभूत ज्ञान, जिसको बीज ज्ञान कहा, वो चीज है, बीज ज्ञान कहते हैं, वो चीज है भावभाषण वाले, तो उसमें परमार्थ शब्द भी इसलिए लिया कि वहां परम तत्व भी, प्रयोजनभूत तत्व, परम तत्व भी जाना जाता है, और अंतर्मुख कैसे होवे वही जो प्रयोजन है वो भी वहां जाना जाता है, अंतर्मुखता भी वहां से समझ में आती है, और अंत तत्व स्वरूप जो परमात्मा तत्व है वो इसकी पहचान भी वहां से होती है। तो एक साथ दो बात करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वचन गांभीर्य कितना है कि एक शब्द में दो बात कर दिया, परमार्थ में दो बात कर दिया, एक तो परम तत्व मैंने अपना स्वरूप को पहचाना, दूसरा किस विधि से कार्य पद्धति होती है आत्मकल्याण की, विधि क्या है वो बात भी एक शब्द में कर दी, और जाना उतना नहीं, पहचाना उतना नहीं, विश्वास भी आया, विश्वास आया तो महिमा आई, महिमा आई तो पुरुषार्थ चला, महिमा और पुरुषार्थ साथ में हुआ तो उसका रस उत्पन्न हुआ, रस उत्पन्न हुआ तो परिणति हुई, ये सब चक्कर चलता है फिर पूरा, इस तरह से परिणति तक पहुंचती है बात, तो परिणति होती है वो बलवान चीज हो जाती है। उदय अनुसार स्वरूप को पहचानने वाले का उपयोग भी हो सकता है, इधर उधर जाएगा, लेकिन इसकी परिणति हो गई, और परिणति लब्ध की हो गई तो वो उपयोग को बार बार खींचेगी, क्योंकि परिणति एक डोरी है और उपयोग इसका पतंग है, पतंग कितना भी दूर हो डोरी से उसको खींचा जाता है, ऐसी बात हो गई। फिर इस तरह से यहां कहते हैं कि उपयोग में एक ही साधन है, आत्मा को जानने का एक ही उपाय है उपयोग, उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग क्रोधादि में, समय शांति संवर्धिकार की 180 गाथा, वो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग स्वरूप आत्मा है, उपयोग में आत्मा को जाना, चमक में हीरा को जाना तो उपयोग में आत्मा को जाना, बहुत से दृष्टांत ऐसे ही है, जैसे कोई ऐसे बता दे भाई ये रेलवे स्टेशन है लेकिन यहाँ किसी ने बम रख दिया है, बम, और बता दे कि ये जो कोने में पड़ा है भाई बम है, तो हमने क्या देखा? बाहर की अवस्था देखी और कुछ देखा और प्रतीति कैसी हुई, इतना विश्वास हुआ कि ये फूटेगा तो मकान का फुर्चा फुर्चा हो जाएगा और जो भी वहां मकान में होंगे वो सब मर जाएंगे। तो जानते ही विश्वास किया और विश्वास करते ही भगने लग गए सब। कितना कार्य हुआ, जानना, प्रतीति करना कि बॉम्ब ही है और आचरण किया भागने का, ज्ञान श्रद्धा और आचरण तीनों हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे उपयोग में आत्मा को जाना, अनंत शक्ति मंडित, अनंत शक्ति भरपूर आत्मा है ऐसा विश्वास हुआ और इसकी महिमा होके स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ भी चालू हो गया। ऐसा भाव प्रतीति द्वारा करे, प्रतीति सहित ऐसा भाव करे और ऐसा जाने कि ध्यान, इसका ध्यान करने से निश्चलता में चंचलता चली जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, ऐसा जाने। कभी ध्यान हुआ नहीं है लेकिन ऐसा जाने, तो ध्यान का स्वरूप भी जाना, ध्यान कैसे होएगा वो भी जाना। और निज रूप ज्ञान को ही, निज रूप ज्ञान को ही अनुपम पद का सर्वस्व जाने। यह स्वरूप का ज्ञान बिना पर की मान्यता करके संसारी दुखी हुए। जो भी संसारी जीव है वो दुखी क्यों हुए कि ऐसे आत्मस्वरूप के ज्ञान बिना पर की मान्यता आत्मा रूप करके, अपने रूप करके सभी संसारी जीव दुखी हुए। जे स्वरूप समझा बिना पानो दुख अनंत, वो बात इधर आ गई। ऊपर की मान्यता कैसे मिटे, यह कहने में आता है कि ऐसे पर को अपना रूप माना है, शरीर को आत्मा रूप माना है, कुटुंब आदि संयोग को अपनापन अपना है ऐसा माना है, मकान कीर्ति आदि को अपना माना है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे समाज वाले हैं, ये मेरे देश वाले हैं, ये सब मेरे 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 माने हैं, ऊपर की मान्यता है। इससे जीव दुखी हुआ, संसार में जन्म मरण किया। वो मान्यता किस तरह से मिटे, वो मान्यता मिटाने का उपाय की रीति क्या है, वो कहने में आता है। प्रश्न वो है कि क्या क्या यहाँ द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से आत्मा भिन्न है ऐसा बताना चाहते हैं, ऐसा प्रश्न है। यहाँ वो प्रकरण नहीं है, वो प्रकरण नहीं। यहाँ तो एक विधि का विधान है, मुख्य करके आत्मस्वरूप दिखाते हैं और आत्मस्वरूप के प्राप्ति की विधि दिखाते हैं। ये दो मुद्दा मुख्य रूप से चलता है। तो पहले कह रहे थे किस रीति से मिटे, पर की मान्यता, पर को अपना रूप माना है उसकी मान्यता किस रूप से मिटे, वो मिथ्या मान्यता है। या मान्यता मिथ्या होती है वह ज्ञान भी मिथ्या ही होता है, चाहे शास्त्र ज्ञान कितना भी हो, और वहां आचरण कितना भी त्याग रूप होता है, दीक्षा ग्रहण किया हो तो मिथ्या आचरण है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है या मिथ्या ज्ञान है, वहां मिथ्या आचरण ही होता है। वो कहने में आता है कि भेद ज्ञान द्वारा जो, क्या बात आई, भेद ज्ञान द्वारा पर और निज का अंश अंश को न्यारा न्यारा भिन्न भिन्न जाने, एक अंश का भी मिलावट नहीं करे, ऐसा भेद ज्ञान करे अंदर में कि आत्मा भीतर में एक आत्मभाव है और बाकी के सब अन्य भाव है। वो आत्मभाव कौन है? ज्ञान है वो आत्मभाव है और सब रागादि अन्य भाव है। एक अंश को भी मिला नहीं, ज्ञान का एक अंश को भी राग रूप नहीं करे, राग का एक सूक्ष्म अंश को भी आत्मा रूप नहीं करे। ये राग मेरा है और अच्छा है, वहां फिर ज्ञान नहीं होगा। भेद ज्ञान द्वारा पर और निज का अंश अंश को न्यारा जाने, भिन्न भिन्न जाने, उसमें क्या देखते हैं? यहां ये जो विधि है भेद ज्ञान की, वो विधि निषेधात्मक है। विधि मैंने मैं ऐसा हूं पॉजिटिव साइड पकड़ना है, और जिसमें अपनापन किया है वो मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा नेगेटिव साइड लेना है, और दोनों एक साथ चलता है। विधि निषेधात्मक भाव एक साथ चलता है, उसको कहते हैं भेद ज्ञान। तो पहले लेते हैं अस्थि को, लेते हैं पॉजिटिव साइड को, कि मैं उपयोगी, उपयोगी मैंने उपयोग स्वरूपी, मैं ज्ञान स्वरूपी नहीं कह करके उपयोग स्वरूपी कहते हैं। समीसार में 183 गाथा में वही बात लिया, तो ये लिया ने कि उपयोग में उपयोग, तो ऐसा उपयोग शुद्ध आत्मा करे, ऐसी बात लिखा, वहां भी उपयोग शब्द लिया है। विधि का विषय जहां आता है वहां उपयोग की मुख्यता है, क्योंकि परिणमन से वस्तु को ग्रहण करना है। मैं उपयोगी, मेरा उपयोगीपना, उपयोगित्व, मेरा उपयोगपना, ग्रंथ गाते हैं सभी ग्रंथ जो भी भगवान के आगम है वो मेरा उपयोगित्व को गाता है। भगवान ने भी दिव्य ध्वनि में क्या गाया? सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव ने भी अपने दिव्य ध्वनि में किसका गीत गाया? कि आत्मा का उपयोगपना का गीत गाया है, कि देखो तुम उस उपयोग स्वरूपी हो, देखो तुम उपयोग स्वरूपी हो। ये उपयोग है ना, ज्ञान का उपयोग है ना, बस उसी वही तेरा स्वरूप है, ऐसा ही तुम हो। तुम भूल जाओ कि मैं राग स्वरूपी हूं, तुम भूल जाओ कि मैं देह स्वरूपी हूं, तुम भूल जाओ कि मैं कुटुंब वाला हूं, परिवार वाला हूं, ऐसा ऐसा संयोग वाला हूं, ये सब भूल जाओ, विस्मरण करो, मैं उपयोग स्वरूपी आत्मा हूं। और यही बात सभी ग्रंथों में गाई है। क्यों? कि सभी ग्रंथ भगवान की दिव्य ध्वनि के अनुसार सभी ग्रंथों की रचना हुई। मेरा उपयोगित्व ग्रंथ गाते हैं, मैं देखूं, देखता हूं, जानता हूं, मैं देखता हूं और जानता हूं, यानी देखने वाला हूं, नाता दृष्टा हूं मैं। यह निश्चय यथार्थ करते करने से आनंद की उत्पत्ति होती है। ये एक नया फैक्टर पैदा हो जाता है जब स्वरूप का यथार्थ निश्चय अनुभव में होता है, तब साथ साथ इसके आनंद की उत्पत्ति हुए बिना रहती नहीं। उसको कहते हैं आत्मानंद, आत्मा से आत्मा में रहा हुआ आनंद उसी वक्त उत्पन्न हो जाता है। पर परिणति को मैं अपने करी है की है, यह न करूं तो ऐसी मान्यता नहीं होगी। मैंने तो रागादि पर परिणति को अपना अपनी कर ली है, मेरा राग है, मैं करता हूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, ये सब चलता है कि नहीं चलता है। पहले संसार में कुटुंब की फर्ज या पहले आत्मा को संसार मिटाने का श्रद्धा ज्ञान आदि धर्म करना, वो पहली फर्ज, कौन सी फर्ज, कौन सा कर्तव्य पहला है, कौन सा कर्तव्य पहला है? चलो एक दफे कुटुंब को व्यवस्थित कर दे, कुटुंब में सबको, अपने बाल बच्चे को, सबको व्यवस्था अच्छी हो जाए, फिर धर्म करें। अगर इसके पहले धर्म करेंगे और वो लोग दुखी होंगे तो वो लोग क्या कहेंगे कि आप लोगों का ऐसा धर्म है क्या, हमको दुखी करके धर्म करना है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये कोई धर्म का तरीका होता है क्या? हाँ, कि हमको तो आप दुखी करें और आप माने कि हम धर्म कर रहे हैं। हाँ, ठीक है क्या? कृपा देव ने किया कल 217 में देखा ना, रात को 217 पत्र में सुभाष भाई को लिखा कि आपको गांधी शिखामण लिखते हैं कि आप अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह हो जाओ, कुटुंब का प्रेम छोड़ दो लियो। ठीक, कुटुंब का कर्तव्य तो एक दफे रहा, प्रेम भी छोड़ दो। तो कुटुंब का प्रेम छोड़े तो फिर किससे प्रेम करे है? अपनी आत्मा से। गुण का प्रेम है, अगर जीव को गुण का प्रेम है तो गुण निधान अंदर में है, उसका प्रेम करो। जब कुटुंब के का प्रेम छोड़ोगे तो कुटुंब वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बहुभाग तो बुरा लगेगा, समझदार तो बहुत कम होते हैं, ऐसी समझ करने वाले तो कुटुंब में, हजारों कुटुंब में गिने गिने बहुत कम होते हैं, बाकी तो बुरा ही लगेगा।
जो समझदार होगा वो भी आ जाएगा इधर, जो समझदार होगा वो भी आ जाएगा इधर,
समझदार होगा वो ऐसा ही करेगा,
बुरा तो ऐसा लगेगा उसके गुरु को भी बुरा
कहेगा। ऐसी शिक्षा देने वाले को ऐसा ही कहेगा कि आपके गुरु कैसे ऐसा सिखाते हैं क्या, और ऐसा सीखने के लिए वहां जाते हो क्या, ऐसा ही बोलेंगे। बात तो ऐसी होगी,
होती है
बात तो ऐसी होगी। हाँ, अभी भूरखी नाखी इन प्रकार की बातें आएगी। लेकिन जिसको संसार से मुक्त होना है उसको ऐसी दरकार करने से अपना काम होने वाला नहीं है। यह सुनती भाई पहले बराबर व्यवस्था नहीं कर लेना है। अब इनका एक चिट्ठी आया था, अभी मेरा काम बराबर हो गया है, लड़का को भी अमेरिका भेज दिया है, नहीं भेजा, भेज देंगे, इसकी व्यवस्था हो गया है और आर्थिक व्यवस्था भी ठीक ठीक बैठ गई है, अभी कोई कुटुंब की चिंता नहीं है। अब मैं सत्संग में रहूंगा और आत्मकल्याण करूंगा, बराबर है कि नहीं है? हैं? नहीं। तो पहले तो ये कुटुंब मेरा और इसकी व्यवस्था बराबर बिठाओ, बाद में धर्म करो। तो ये तो संसार के कार्यों की प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी तो अनादि से चल रही है, और आत्मकल्याण करने की प्रायोरिटी कभी आई नहीं। प्रैक्टिकल होना मतलब कि अपनापन छोड़ना नहीं, इसका नाम प्रैक्टिकल है क्या है? ये मेरा कुटुंब पर उसकी व्यवस्था ठीक करना वो मेरा फर्ज, वो मेरी ड्यूटी, वो पहले कर लो, उसका आत्मकल्याण कभी होता नहीं। वो तो कहते हैं मेरे पुण्य की मान्यता किया, सबसे पहले आत्मकल्याण करना। ये सब बात तो अनंत काल से करते आ रही है, इसमें नई बात कौन सी है? और सारी दुनिया वही कर रही है, उसमें क्या फर्क किया तुमने? तो तुम दुनिया वालों के साथ ही है, सब परिभ्रमण करेंगे, तुम भी करोगे, करो तो करो। अब तो अलग होना है, ये परिभ्रमण से छूटना है, तो सारा परिस्थिति बदलना पड़ेगा। संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग दोनों एक नहीं है, एक तो नहीं है, परस्पर विरुद्ध है, पूर्व पश्चिम का उसमें अंतर है। मैं मेरी परमे मान्यता की, अब मैं निज में निज रूप मानूं तो मानते ही मुक्ति के साथ मेरी सगाई हुई। मुक्ति तो बाद में होगी, उसको लग्न कहते हैं, शादी कहते हैं, लेकिन मान्यता बदली, सम्यक दर्शन हुआ, श्रद्धा बदली, तो मुक्ति से सगाई हो गई। अभी उसको मुक्ति मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है, उसको परिपूर्ण मुक्त दशा हुए बिना रहती नहीं। मुक्ति के साथ मेरी सगाई हुई, अवश्य मैं वर होऊंगा। मैं तो क्या लिखा, मैं अवश्य वर बनूंगा, मुक्ति के साथ मेरा मेरी शादी हो जाएगी। कर्म के भ्रम का, यानी कर्म भाव में मैंपने का भ्रम का विनाश होते ही निज सुख होता है। जैसा कर्मजनित अवस्था में मैं मनुष्य हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, ये कर्मजनित संयोगिक अवस्था में अपनापन हुआ था, मैं ऐसा हूँ ऐसा जो माना था, वो भ्रम था, वो भ्रम छूट गया। कल 710 पत्र में आया कि भान होते ही स्वभाव परिणामी हूँ, स्वरूप का भान होते ही स्वभाव परिणामी हूँ। तो भान हुआ तो भ्रम मिट गया, भान कब हुआ तो भ्रम मिट गया कि मैं फलाना फलाना हूँ, सब मिट गया, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी चैतन्य देव आत्मा हूँ, स्वभाव का परिणाम चालू हो गया। कहते हैं कि कर्म का भ्रम मिटते ही निज सुख होता है, आत्मा का सुख प्रकट होता है। यह निज सुख कैसी रीति से हो यह कहने में आता है। देखो रीति की बात लेते हैं, ऐसा आत्मिक सुख आत्मा का, जिस सुख वचनातीत सुख से आत्मा परितृप्त होता है, तृप्त होता है, वो कैसा, वो सुख कैसे उत्पन्न होता है वो बात करते हैं। कि मेरा अनंत सुख मेरे उपयोग में है, देखो उपयोग की बात बार बार लेते हैं, मेरा अनंत सुख कहाँ है, मेरे आत्मा में ऐसा नहीं लिया क्योंकि मैं खुद ही उपयोग स्वरूप ही हूँ, मेरा आनंद सुख मेरे उपयोग में है, सुख को कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, उपयोग कहीं बाहर अनेक प्रकार के अनुकूलता के साधनों में नहीं है, सुख कहीं बाहर नहीं है। लिखा ने, हे जीव तने खरु कहूं छू, हे जीव तू भ्रमामा तने खरू कहू छू, तारू सुख तारा मां छे, आवे छे 108, तारू सुख तारा मां छे, बाहर शोधवाथी ते नहीं मळे। एक बहुत बुद्धिमान आदमी को एक प्रश्न पूछा था हमने, बात तो ऐसे हुई कि फंक्शन में हमारा मिलना हो गया। बोले कि मैंने बहुत से दुनिया के जो भी धर्म हैं अलग अलग प्रकार के, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू, अनेक धर्म के ग्रंथ पढ़े हैं। बुद्धिमान तो था ये आदमी, तो बोले कि आपसे थोड़ी चर्चा करनी है। ठीक है, तो मैंने पहला प्रश्न पूछा कि जैन ग्रंथ आपने पढ़े हैं क्या? जैन ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। मैंने कहा ठीक, फिर तो आप कम नसीब है, इतने इतने ग्रंथ पढ़े दुनिया भर के और जैन ग्रंथ नहीं पढ़ा। बोले तो नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, तो छोड़ो इस बात को, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। देखो कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं ये सारे जगत में, इंटेलिजेंट आदमी जिसको बोले जाते हैं, हाईली इंटेलिजेंट हो, वो लोग क्या करते हैं कि वो संयोग के पीछे इसकी दौड़ लगी हुई है कि नहीं लगी है, चाहे वो अमेरिका वाला हो, रशिया वाला हो, या भारत वाला हो, या यूरोप वाला हो, सबकी दौड़ कहाँ है? संयोग के पीछे। संयोग को जुटाना, प्राप्त संयोग को बढ़ाना और उसकी संभाल रखना, ये तो सब में कॉमन है ना, ये तो कॉमन है, कोई भी देश का आदमी है। क्यों? कि इससे सुख मिलता है वो सब मानते हैं, इसलिए। इसके पीछे क्या कारण है? कि इसकी मान्यता का कारण है कि सुख मिलता है। अब ये जमाना मटेरियलिज्म का है, मानते हो क्या? बराबर हमारा जो अभी पीरियड चल रहा है वो मटेरियलिस्टिक पीपल लोग का है। सब पीपल कैसे कैसे हैं? मटेरियलिस्टिक हैं। मटेरियलिज्म जो है उसी दृष्टिकोण से मेरा एक प्रश्न है कि आपको, आपने सुख को मटेरियलाइज किया है कि नहीं किया है? आप कितने भी बुद्धिमान हो, मेरा एक प्रश्न है कि आप ने हैव यू मटेरियलाइज हैप्पीनेस, वही प्रश्न मेरा था। तो देखने लगा ऊपर से नीचे, तो नेशनल ड्रेस है मेरा, तो धोती कुर्ता टोपी टोपी भी पहना था उन्होंने। तो आप दिखते हैं तो व्यापारी जैसे, लेकिन व्यापारी है नहीं। इससे क्या मतलब है? हमारी बात तो साइंटिफिक है, विज्ञान का जमाना है, मटेरियलिज्म की बात चलती है, स्विच ऑन करो ये होना चाहिए, स्विच ऑन करो ये होना चाहिए, स्विच ऑन ऑफ करो ये हो जाएगा। आपने सुख कहाँ मटेरियलाइज किया? मटेरियलाइज तो नहीं किया, फिर क्यों दौड़ते हो इसके पीछे? मेरा दूसरा प्रश्न होगा, जब आपने सुख को मटेरियलाइज नहीं किया फिर भी आपकी इसके पीछे दौड़ है, तो आपकी मान्यता है तो है कहां? तो ये मान्यता अंधश्रद्धा है कि नहीं है? और आप अंधश्रद्धा में पड़े हो कि नहीं पड़े हो? आप लोग धर्म के श्रद्धालु को, जो मटेरियलिज्म वाले हैं वो धर्म के श्रद्धालु को अंधश्रद्धालु बोलते हैं। हम कहते हैं कि आप अंधश्रद्धालु है कि नहीं है? तो बात तो खरी है, हम अंधश्रद्धालु है, आपने बहुत बड़ी किक मार दिया हमको। मैंने बोला कि कितने अंधश्रद्धालु है मालूम है? मैंने इससे भी एक किक और लगा दिया कि 1500 साल पहले हमारे लोग हिंदुस्तान में यज्ञ यागादि करते थे, उसमें प्राणी का पशुवध करके उसमें डालते थे और वरुण देव को खुशी करके बरसात लाने की कोशिश करते थे, जब दुष्काल होता था तब यज्ञ करते थे कि पानी गिरे आकाश में से, इसके लिए यज्ञ करो और हिंसा करो, अंधश्रद्धाएं कहा। वो जितने अंधश्रद्धा उठे उतने ही आप लोग हैं, इससे कम नहीं है। क्यों? तो बिना देखे मान लिया, मटेरियलाइज किए बिना माना। तो दुनिया तो ऐसे चलती है। ये जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि जिसमें सुख को मटेरियलाइज किया है। सुख किस द्रव्य में है, किस द्रव्य का गुण है और किस गुण की पर्याय है, वो विज्ञान जैन दर्शन में है और कहीं जगह नहीं है। फिर वो बोला कि फिर आपका ग्रंथ हमको दे दीजिए। वो था साम्यवादी लीडर, था साम्यवाद का लीडर था, गुजरात का प्रेसिडेंट है सुबोध मेहता करके, साम्यवादी पार्टी का सीपीएम। तो बोले कि आपके ग्रंथ में मेरे को रूसिया भेजना है, मॉस्को भेजूंगा मैं, भेज देना। मैंने बोलो दिए, पुस्तक भी दिए उनको, भेज दिए। बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, स्टडी करना और जरूर पड़े तो हमको बुला लेना, हम मॉस्को आएंगे। इसमें साइंस है पूरा, नहीं है तो दिखाओ तो धर्म ग्रंथ का है, लेकिन सभी ग्रंथों में साइंस है। समय सारादि जो भी ग्रंथ है बिल्कुल आत्मा का विज्ञान है, और सभी हमारे जो धर्म के नेता होते हैं वो भी ऐसा कहेंगे कि सुख आत्मा में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। सुख आत्मा में है इसका विज्ञान, तो विज्ञान अनुसार धर्म का निरूपण है, ऐसे अंधश्रद्धा से निरूपण नहीं है। ये साम्यवादी था, पण पाछळ थी रजनीश मां गेला। आ तो छे सोशियल वर्कर छे, आ तो सोशियल वर्कर छे। अपना सुख का प्रकरण चलता है, मेरा अनंत सुख मेरे उपयोग में है। अब क्या है, हमारे शास्त्र पढ़ने वाले यहाँ थोड़ा तर्क वितर्क करते हैं कि मेरा उपयोग तो अल्प है, मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ, सामान्य मेरा उपयोग है, इसमें अनंत सुख मेरा कहाँ से होगा। वो बात नहीं करना चाहते हैं, यहाँ उपयोग सामान्य लेना है, ज्ञान सामान्य लेना है, जो निराकुल स्वरूप होता है। कैसे होता है? निराकुल स्वरूप होता है। वो तो 833 है, आत्मभावना तो 833 में है। विज्ञान का विषय चला है, पहले वचन वो है, देह से भिन्न स्वपर प्रकाशक परम ज्योति स्वरूप एवो आत्मा तेमा निमग्न थाओ। हे आर्यजनो, अंतर्मुख थईने स्थिर थईने ते आत्मा मां ज रहो तो अनंत अपार आनंद अनुभवशो। पहले वचन है हिंदी में, देह से भिन्न स्वपर प्रकाशक परम ज्योति स्वरूप ऐसा यह आत्मा उसमें निमग्न हो, हे आर्यजनों अंतर्मुख हो करके स्थिर हो करके यह आत्मा में ही रहो तो अनंत अपार आनंद का अनुभव होगा, आपको अनंत अपार आनंद का अनुभव होगा। सुख का बात पहले, आनंद का बात पहले लिया है। सर्व जगत के जीव, जगत के सर्व जीव कुछ न कुछ प्राप्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े चक्रवर्ती राजा भी वैभव बढ़ाने के परिग्रह के संकल्प में प्रयत्नवान है और उसको प्राप्त करने में ही सुख मानता है, परंतु अहो ज्ञानियों ने तो उससे विपरीत ही सुख का मार्ग निश्चित किया है कि किंचित मात्र भी ग्रहणा यही सुख का नाश है, क्योंकि आकुलता होती है। किंचित मात्र ग्रहण करने की वृत्ति वही दुखमय है, वो आकुलतामय है, वो सुख का नाश करने वाला परिणाम है। विषयों से जिसकी इंद्रियां आर्त है, मैंने दुखी है, आतुर है, उसको शीतल शांत ऐसा आत्म सुख आत्म तत्व कहां से प्रतीति में आवे कि नहीं आएगा। परम धर्म रूप चंद्र के प्रति राहु जैसे परिग्रह, इससे अब मैं विराम पाने को चाहता हूं। हमको परिग्रह को क्या करना है, कुछ प्रयोजन नहीं है। सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहां सर्वोत्कृष्ट सिद्धि, तो एक स्लोगन के जैसा बात है। ये आर्यजनों, यह परम वाक्य का आत्मा रूप से तुम अनुभव करो, इतना पत्र है। तो सुख और आनंद की प्रधानता से वो बात क्या है। बहुत सी बातें लिया है, विस्तार करें तो काफी समय लगे। ऐसी बहुत सी बातें इस पत्र में लिया है, लेकिन आनंद की सुख की प्रधानता से ये बात है। सुखी होना हो तो आत्मा में रहो, इधर उधर बाहर के परिणाम छोड़ो और बाह्य पदार्थ की प्राप्ति की जो भी वांछा है यही दुख का है, इच्छा दुख मूल। कृपालु देव ने भी कितने काव्य हिंदी में रचना किया है, यम नियम संयम काव्य हिंदी में भी है। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन दृग मैंने दृष्टि। जब गुरु मिलता है, ज्ञानी गुरु मिलता है, तो दृष्टि से हमारा स्वरूप कितना दूर है, चार अंगुल मैंने इतना। तो इतना कोई नजदीक पदार्थ आता है और नहीं दिखे वो कैसा बने। हमारी दृष्टि से चार अंगुल नजदीक कोई पदार्थ आए और नहीं दिखे वो कैसा बने, ऐसा तुम्हारा पदार्थ उतना समीप है, मैंने दूर है ही नहीं, बिल्कुल तुम्हारी दृष्टि से दूर है ही नहीं। लेकिन कब, के गुरु मिले तब। बिना गुरु इतना नजदीक होने पर भी देखने में नहीं आता है, नहीं दिखाई देता है। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सो भेद मैंने रहस्य। शास्त्र पढ़े ऐसे रहस्य समझ में नहीं आए, लेकिन गुरु के प्रति प्रेम का प्रभाव बढ़ गया, दर्शन मोह का एकदम मंद होने का हो गया, ज्ञान की निर्मलता आ गई और आगम के रहस्य का पता चल गया। ये प्रोसेस होता है, इसके पीछे इतना प्रोसेस हो जाता है। गुरु से प्रेम होने से दर्शन मोह मंद होता है, दर्शन मोह मंद होने से ज्ञान में निर्मलता आती है, मति निर्मल होने से आगम का रहस्य पकड़ने में आ जाता है। ये प्रोसेस है। इसके पीछे और इसके पहले आगम पढ़े या कोई भी साधन करे, संत चरण आश्रय बिना साधन करया कोई पार बार क्या परिभ्रमण बढ़ाया, पार होने का तो सवाल नहीं है, परिभ्रमण बढ़ाया, साधन करके परिभ्रमण बढ़ाया, क्योंकि अहंभाव हो गया इसका, मैं ऐसा, मैंने इतनी तपस्या किया। और धर्मदास जी शुल्लक ने कहा ना कि मैंने हजारों उपवास किए थे और इसका अभिमान भी मुझे बहुत हुआ था। तो उपयोग का निराकुल स्वरूप है, यहां से अनंत सुख की खानी का पत्ता लगता है। देखिए सोने की खान में सोने की लगड़ियां नहीं निकलती, सोने की खान में कभी सोने की लगड़ियां नहीं निकलती। लगड़ी समझे हिंदी में? नहीं समझे?
बिस्कुट
है, बिस्कुट तो अंग्रेजी शब्द है,
पासा
क्यों बोलते हैं? चौरसा, पासा, डली, 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 हाँ, ये कोई सोने के खान में ऐसा कैसे सोना नहीं निकलता कभी? मिट्टी के रजकण जो होते हैं वो उसके साथ सोने के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो भूस्तर शास्त्री होते हैं, मैंने वो जमीन के विज्ञानी होते हैं, वो उस पत्थर को समझ सकते हैं कि इसमें सोने के पार्टिकल हैं। और उसका जो प्रमाण होता है उसको लेबोरेटरी में ले जाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि ये जगह पे इतना टन सोना निकलेगा। कितना टन? बंदी सोने का वो फोरकास्ट कर सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है, इतना सोना निकलेगा। मिला क्या? पत्थर, सुवर्ण पत्थर, सोने का पत्थर, थोड़ा पार्टिकल उसमें सोने का होता है, थोड़ा मिट्टी का होता है। उसकी गिनती करके, उसका प्रमाण देख करके कितना टन सोना निकलेगा वो बोल सकता है। ऐसे खानी में हमेशा शुद्ध सोना नहीं मिलता, ऐसे संसार में उपयोग है उसमें शुद्धात्मा प्योर नहीं मिलता है। क्यों? राग द्वेष मोह से भरे हुए परिणाम है, उसमें शुद्धात्मा प्योर नहीं मिलता है। लेकिन उसका पता मिल जाता है कि हमारा अनंत सुख की खान हमारे उपयोग में है। फिर प्रोसेस चलता है तो जो मोक्ष दशा आती है उसमें पूरा शुद्धात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो तर्क वो करेगा शास्त्र पढ़ने वाला, उपयोग में अनंत सुख कहां से हुआ? अनंत सुख तो मोक्ष में अनंत चतुष्टय जब होता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वेदी, तेरहवें गुण स्थान में होता है। और मेरा उपयोग, मेरा अनंत सुख मेरे उपयोग में है कैसे? के उपयोग से अनंत सुख की खानी का पता
चल जाए
लगता है, क्योंकि ज्ञान स्वयं निराकुल स्वरूप है, राग आकुलता स्वरूप है और ज्ञान निराकुल स्वरूप है। एक आत्मभाव है, एक अन्य भाव है, दो का भेद विज्ञान करो। और ये मेरा उपयोग तो मैं सदा धारण करता हूं, मेरा उपयोग मेरे से कहीं दूर नहीं होता, मैं सदा धारण करता आया हूं। अगर मैं मेरे उपयोग में खोज करूं या सही रूप से अंतर्मुख हूं तो मेरा आनंद सुख प्राप्त हो सकता है। परंतु मैं उपयोग को भूल करके अनुपयोग में अनादि से रत होकर करके सुख स्थानक चेतना उपयोग को भूला, अतः सुख कहां से होगा? क्या गड़बड़ हुई कि मैं उपयोग को, ज्ञान को भूल गया? अनुपयोग मैंने राग में, उसमें ज्ञान नहीं है, उसको अनुपयोग कहते हैं, उसमें रत हुआ, राग सुहाया मुझे, उसमें मैं लीन हुआ और लीन होकर के बार बार सुख का स्थान ऐसा जो चैतन्य का उपयोग इसको भूल गया, मुझे सुख कहां से होगा? सुख नहीं हुआ किंतु दुख की प्राप्ति हो रही। यही कारण है। अब मैं यह योग प्रकाश को साक्षात योग्य स्थान रूप किया, बस अयोग्य स्थान किया था उसमें योग्य स्थान किया, उपयोग में उपयोग, ये इसका योग्य स्थान है। क्रोधादि में उपयोग है इसका योग्य स्थान नहीं है, रागादि में उपयोग है इसका अयोग्य स्थान है। इस तरह से और भी थोड़ा विषय है, अच्छा लिया है यहाँ से भी कि हमने क्या क्या गलती किया, कैसे कैसे किया, क्यों दुखी हुए, और उस दुख मिट करके आत्मसुख प्राप्त करने का कैसा कार्य पद्धति है, वो सब बात अभी लेंगे। और तो अच्छा लिया है यहाँ से, कल के स्वाध्याय में लेंगे।